मुंबईकरांशी हितगुज साधत आहे बाबासाहेबांच्या जीवनाविषयी. पण माझं जास्त जे काम आहे ते महाराष्ट्राच्या बाहेर आहे, त्याच्यामुळे काही वेळ मराठी बोलल्यामुळे माझ्या मराठीची कंबर तुटते. म्हणून जर मी कधी हिंदीत बोललो तर सर्वांना हिंदी समजते, तर कदाचित मी काही वेळाने हिंदीत बोलू शकतो, त्याच्याविषयी दिलगिरी व्यक्त करतो. मंचावर उपस्थित या केंद्राचे चेअरमॅन अभियानंद आकाशानंद जिंगसागर, माझे धर्मचारी बंधू आणि भगिनींनो आणि माझ्या मित्रांनो, निश्चितच जसं आकाशानंद बोलले की सर्व देशांमध्ये, समूचे देशांमध्ये, पूर्ण जगभरात बाबासाहेबांची जी जयंती आहे ही अतिशय हर्षोल्लासानं लोक साजरी करतात. मी विचार करत होतो जेव्हा जिंगसागरांनी खूप मोठा परिचय माझा दिला, मला फार नम्र व्हावंसं वाटते. आता मी तितका मोठा नाही, त्यांच्या मनाचा तो मोठेपणा आहे. एक मित्र म्हणून त्यांचं ते माझ्यावरचं प्रेम आहे, म्हणजे ते मला स्पर्शून गेलं. मी जेव्हा हंगेरीत होतो, पहिल्यांदा मी जेव्हा हंगेरीला गेलो तेव्हा ते आंबेडकर जिम्नॅशियम ज्याला म्हणतात या नावानं त्यांनी एक स्कूल ओपन केली आहे. आणि ही जी जिप्सी लोकं होती ही इतिहासाचा जर अभ्यास केला तर 10व्या शतकात इथूनच मायग्रेट झालेली ती लोकं आहेत. आणि त्या शाळेत मी जेव्हा पहिल्यांदा गेलो तेव्हा बाबासाहेबांचे चित्र, त्यांचे अभ्यास करताना ते चित्र, त्या बल्बच्या खाली रस्त्याच्या दिव्याखाली अभ्यास करताना ते चित्र आणि पूर्ण असं म्हणजे त्यांचं जे जीवन चरित्र आहे तो चित्राच्या रूपाने त्यांच्या शाळेमध्ये, त्या विद्यार्थ्यांमध्ये, त्या लोकांमध्ये ते बिंबवण्याचा प्रयत्न करत होते. आणि त्या कार्यक्रमासाठी तिथले जे काही मिनिस्टर्स असतील ते आले होते. तर मी बोलणार होतो त्याआधी त्यांनी असं जसं आपण आता काही गाणी ऐकली तर त्यांनी पण काही गाणी रचली होती, काही गाणी कंपोज केली होती, तर ती गाणी ती लोकं म्हणत होती आणि मला आधी ते कळालं नाही कारण की ते त्यांच्या भाषेत होती. पण त्याचं एक इंग्लिश व्हर्जन जे आहे, त्याचं इंग्रजीचं जे रूपांतर आहे ते रूपांतर ते म्हणत होते. और यानी उसके बाद मैं वो उनकी जो भाषा है मैं समझ पा रहा था. तो जब मैंने उनकी लफ्ज़ों को, उनके शब्दों को जब मैंने सुना तो मैं मेरे आंसू नहीं रोक पाया. वो 22 प्रतिज्ञाएं गा रहे थे और मैं सोच रहा था कि वो लोग यूरोप में रहते, ईस्ट यूरोप में रहते जहाँ पे बाबा साहब स्वयं गए नहीं, ना ही वो जो रोमा जिप्सीज है उनको जिप्सी कहना अच्छा नहीं लगता, जैसे हमें दलित कहना अच्छा नहीं लगता, तो हम शेड्यूल कास्ट या बहिष्कृत ऐसे ही शब्दों का प्रयोग बाबा साहब ने किया है. बाबा साहब ने कभी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा में उसे शेड्यूल कास्ट कहा है. या जब कभी भी वो अपनों से जेव्हा आपलं लोकांबरोबर ते बोलत होते तेव्हा ते बहिष्कृत लोक आहेत असं म्हणायचे, तर त्या वो बहिष्कृत शब्द का इस्तेमाल करते थे. तो वो रोमा जो लोग थे, मैं सोच रहा था उन रोमा लोगों के लिए बाबा साहब ने प्रत्यक्ष रूप से कोई काम नहीं किया. हंगेरी के संविधान में बाबा साहब ने कोई सुविधाएँ नहीं की है, हंगेरी का संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है, तो ऐसी कोई प्रोविजंस प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट जिसे हम कह सकते हैं, उस रूप से बाबा साहब ने उनकी कोई ऐसी मदद नहीं की है. लेकिन वो जो लोग भारत में जब आए और भारत में जब उन्होंने, जैसे जिंगसागर ने बताया, मैं जब धम्म क्रांति शिविरों में काम कर रहा था तब 2006 में बाबा साहब के धम्म क्रांति के 50 वर्ष पूरे हो गए थे. जैसे आज कृष्ण बौद्ध महासंघ के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, वो 2006 में 50 वर्ष पूरे हो गए थे. तो वहाँ पे उन कम्युनिटी से, उस समूह से कुछ लोग आए थे उन लोगों ने उस शिविर में सहभाग लेकर उन्होंने अनुभव किया कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म देकर या बौद्ध धर्म स्वीकार के किस मुक्ति का स्वाद लिया, किस मुक्ति का उन्होंने आस्वाद लिया। यह बाबा साहब की दृष्टि को उन्होंने गहराई से जाना। इसके पहले वो लोग अन्य जो भारतीय नेता होंगे जैसे गांधी थे, नेहरू थे या और भी जो लोग थे, उनके विचारों से प्रभावित थे। फिर लेकिन जब उन्होंने इस कम्युनिटी को देखा, जब उन्होंने इस समुदाय को देखा, जब उन्होंने इन लोगों के चेहरे पर जो मुक्ति का आनंद देखा, उस आनंद को लेकर वो वापस गए और उन्होंने वो स्कूल की स्थापना की। और उस स्कूल में वे लोग 22 प्रतिज्ञा गा रहे थे। तो मैं बोला, जो लोग हजारों साल से गुलाम थे, आज निश्चित रूप से वो लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, निश्चित रूप से उनके दिलों में बाबा साहब के प्रति प्यार है। मैं किसी के श्रद्धा के ऊपर शंका नहीं जताना चाहता। अब वो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हमारे लिए एक गंभीर विषय है। क्योंकि निरंतर सातत्यानं बाबा साहब तुमच्या सहवासात राहील, सातत्यानं बाबा साहब त्यांच्या सहवासात राहिलेला आहे, तरी पण त्यांच्या मुक्तीसाठी त्यांच्या ओठावर त्यांची जाणीव यावी, हा किती मार्मिक प्रसंग असेल याचा आपण विचार केला पाहिजे। कहीं हम ही लोग वो 22 प्रतिज्ञाएं भूल ना जाए, कहीं हम ही लोग जो बाबा साहब की जो गहरी दृष्टि है उसे भूल ना जाए, यह गलती हमारे साथ ना हो। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम लोग केवल उनके तस्वीरों का उत्साह न करके, उनके पुतलों का उत्साह न करके, केवल उनको फूल चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चा करके उतना ही उनको सीमित नहीं रखना चाहिए। यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती आज इस देश में है। केवल दुनिया मना रही है इसलिए हम उसे मनाएं, ऐसा नहीं है। दुनिया का नाता बाबा साहब के साथ दूसरा है, आपका नाता बाबा साहब के साथ, और इस देश का नाता, केवल मैं किसी विशिष्ट समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ जब मैं आप कह रहा हूँ, आपका मतलब इस देशवासियों का बाबा साहब से नाता कुछ अलग होना चाहिए, विशेष होना चाहिए, उतना ही उत्कृष्ट होना चाहिए, उससे बढ़कर होना चाहिए। क्योंकि वो इस भूमि में पैदा हुए, वे भारत के सच्चे लाल हैं, वो सबसे महान पुत्र इस भूमि के हैं, वो सबसे महान राष्ट्रभक्त इस देश के हैं। उसके बारे में मैं अधिक वक्तव्य करूँगा ही। तो ये बात हमें आज समझने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। निश्चित रूप से नेल्सन मंडेला जिन्होंने एक वर्ण भेद से, रंग भेद से जो इतिहास उन्होंने रचा है, उन्होंने स्वयं भारतीय संविधान से प्रेरणा ली है, भारतीय संविधान के मूल्य को उन्होंने अपने देश में अपने परिस्थितियों में लागू करने की कोशिश की है। तो केवल ये सारी दुनिया जो उनको सेलिब्रेट कर रही है, जो उनका उत्साह मना रही है, वो ऐसे ही नहीं मना रही है। जब तक आपके विचारों में, आपके विजन में, आपके दृष्टि में शक्ति नहीं होती है, तब तक कोई भी उसको मना नहीं सकता है। किस बात का उत्सव हमने करना चाहिए, इतनी भी प्रज्ञा हमने होनी चाहिए, और मुझे लगता है वो प्रज्ञावान लोग ही है जो बाबा साहब का उत्सव मनाते हैं। म्हणून मी नेहमी म्हणतो, आज अशी वेळ आपल्या समोर आलेली आहे या देशात किंवा या संपूर्ण जगात, के जैसे किसी प्यासे को पानी की जरूरत है, जैसे किसी भूखे को रोटी की जरूरत है, जैसे किसी अनाश्रित व्यक्ति को आश्रय की जरूरत है, जैसे कोई स्टार करता है जो भूखमरी से मर रहा हो उसको खाने की जरूरत है, जो धूप में जिसको छाया की जरूरत है, वैसे ही आज इस देश को और दुनिया को बाबा साहब की जरूरत है, इसमें मुझे बिल्कुल संदेह नहीं लगता है। वैसी ही जरूरत आज इस देश को और इस दुनिया को बाबा साहब की है। ये केवल कहने से नहीं होगा, ये केवल मैं उनका अनुयायी हूँ या कोई विशिष्ट समाज उसका अनुयायी है, इतना ही कहकर नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा बाबासाहेब जिसे मैं अक्सर कहता हूँ ही विल बिकम अ विक्टिम ऑफ रिडक्शनिज्म। इसका मतलब संकुचितवाद, किसी विशिष्ट तबके का ही नेता बन के रह जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैं उनसे प्यार करता हूँ या आप लोग उनसे प्यार करते हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, जो लोग मुझे सुनना चाहते हैं, जो लोग मुझे नहीं सुनना चाहते हैं, जब तक हम हमारे दिल के कान नहीं खोलेंगे तब तक शायद बाबा साहब की दृष्टि यहाँ के हर एक नागरिक तक जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। हमें अपना अहंकार छोड़ के, अपने जाति की संकुचितता छोड़ के, अपने धर्म या समुदाय की संकुचितता छोड़ के हमें एक व्यक्ति करके उन्हें सुनने की आवश्यकता है, एक व्यक्ति करके समझने की उन्हें आवश्यकता है, जिसे हम महान पुरुष, बोधिसत्व, विश्व रत्न, ट्रू नेशनलिस्ट, सच्चा देशभक्त वगैरह वगैरह आपके सोशल मीडिया में जितने भी रूप उनके दिए जाते हैं, वो क्यों दिए जाते हैं, उनको आज सोचने की जरूरत है। म्हणून मी मागच्या 2 वर्षापासून ही एक जी काही थीम सुरू केली आहे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र आणि बौद्ध धर्म, बाबासाहेबांच्या दृष्टिकोनातून त्या विषयावर बोलताना, वक्तव्य करताना मी नेहमी म्हणतो की नाचणे ठीक आहे, त्यांचा उत्सव करणे ठीक आहे, मी त्यांना दोष देत नाही, उत्साह केले पाहिजे, हम सिरेमोनियस होने चाहिए ऐसे बनते कहते हैं, हमने उत्साहवादी होने चाहिए, उत्साह करने चाहिए, महोत्सव करने चाहिए, पण फक्त नाचणे पर्याप्त नाही, वाचणे पण तितकेच महत्त्वाचे आहे। मी कधी कधी स्ट्रॉंग होऊन हे पण म्हणतो की नाचणे बंद करा आणि वाचणे सुरू करा, नाचणे बंद करा आणि वाचणे सुरू करा। जर आपण त्यांना जाणार नाही, जर आपण त्यांना जाणून घेणार नाही, तोपर्यंत त्यांच्या विचारांचा जो समाज आहे, त्यांच्या विचारांचा जो देश आहे, त्यांच्या विचारावर आधारलेलं जे लोकतंत्र आहे, त्याची निर्मिती होणार नाही। मेअर सेलिब्रेशन्स आर नॉट इनफ, केवल उत्साह पर्याप्त नहीं है, निश्चित रूप से उत्साह करना चाहिए। ये जो आवाज़ें हैं, ये आवाज़ें अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उनके विचार अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और वो विचार, वो आवाज़ें डेसिमल से नहीं पहुंचती।
हेलो,
डेसिमल बढ़ाने से या डेसिमल कम करने से आवाज़ें नहीं पहुंचती। ये तो बहुत अच्छा निर्णय है कि लोगों को तकलीफ ना हो, एक शांति बनी रहे, और वो केवल विशिष्ट जयंती के लिए ही, सभी त्योहारों के लिए, सभी के लिए वो लागू होनी चाहिए, सभी के लिए वह इक्वलिटी, समानता है, वैसा ही वो नियम, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, तो अच्छी बात है। इसीलिए मेरी आवाज़ कम हो, मृदु हो, ऊंची हो, नीची हो, वो हमारे कानों तक पहुँच कर दिल तक जानी चाहिए, इसकी आवश्यकता है। जब तक यह निर्मिति की प्रक्रिया नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि जो समाज, जो लोकतंत्र, जो राष्ट्र और कैसा धर्म बाबा साहब चाहते थे, वो नहीं होगा। बाबा साहब ने 1945 में बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा, मराठी ते बोलले होते कि जेव्हा देशाचं राजकारण जात आणि धर्मावर आधारित राहील, तेव्हा आधी लोकशाही धोक्यात येईल, आणि जेव्हा लोकशाही धोक्यात येईल, तेव्हा कदाचित स्वातंत्र्यही धोक्यात येईल, हे बाबासाहेब बोलले होते। तो ये जो बात कह रहे हैं, ये कोई देशभक्त ही जिस देश के प्रति प्यार कर रहा हो ऐसी बातें बोल सकता है। जो सच्चा राष्ट्रप्रेमी है, वही व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए कौन सी बातें जरूरी, उसके संरक्षण के लिए, उसके विकास के लिए, उसके समाविष्ट, जिसे इंक्लूसिव सोसाइटी कहते हैं, एक समाविष्ट समाज बनाने के लिए आवश्यक है, ऐसी वो बातें करते हैं। लेकिन आज हमारे अनुभवों में शायद वो लोकतंत्र का अनुभव आता नहीं है, इसलिए कुछ बातें मैं उस लोकतंत्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा। बाबा साहब ने कहा है कि बहुत सारे जो राजनेता हैं और बहुत सारे जो समाज नेता हैं या कोई धर्म नेता है, वो लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि लोकतंत्र यह जो है, यह केवल सरकार बनाने का ढांचा नहीं, Who is saying this? Who is making independent India? आप इस बात को ध्यान में रखिए, केवल बाबा साहब के अनुयायी है इसलिए नहीं है, लोकतंत्र वो मेरे लिए निर्माण नहीं कर रहे थे, लोकतंत्र किसी विशिष्ट समुदाय के लिए वो निर्माण नहीं कर रहे थे, लोकतंत्र वो इस भारत के प्रत्येक जाति धर्म और लिंग के लिए वो निर्माण कर रहे थे। तो लोकतंत्र जो है वो केवल लोगों को जमा करके उनकी संख्या को गिनकर एक सरकार बनाने की पद्धति नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट बी प्रिसेड बाय डेमोक्रेटिक सोसाइटी। जब तक लोकतांत्रिक समाज नहीं होगा तब तक वह लोकतांत्रिक सरकार भी नहीं हो सकती, और बिना लोकतांत्रिक समाज के अगर लोकतांत्रिक सरकार बनती है और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लोकतांत्रिक गवर्नमेंट बनती है, लोकतांत्रिक सरकार बनती है जहां पे समता, स्वतंत्रता और बंधुता और न्याय इन मूल्यों को अपनाया जाता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह लोकतंत्र एक ढोंग होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। यह बाबा साहब की विचार है। तो कैसे वह डेमोक्रेसी को डिफाइन कर रहे हैं कि जब तक वह लोकतांत्रिक समाज नहीं होगा तब तक वह लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी। यह हम समझ नहीं पाए हैं कि यह मात्र सरकार निर्मिति की या सरकार बनाने की या वोट देने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक समाज पद्धति है। और वो कैसी समाज पद्धति है? वेयर ईच सिटीजनशिप हैज अ रिलेशनशिप ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस फॉर अनदर सिटीजनशिप। एक नागरिक दूसरे नागरिक के प्रति जहां आदर और सम्मान का अनुभव करता है, व्यवहार करता है, उसे मैं सच्चा लोकतंत्र कहता हूं। द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट बी फाइंड इन सोशल रिलेशनशिप। हमारे सामाजिक संबंध कैसे हैं, उन सामाजिक संबंधों के बुनियाद पर ही लोकतंत्र को समझा जाता है। और इस लोकतंत्र को समझाने के लिए बाबा साहब यह जो बातें कर रहे हैं यह इतनी गहरी बातें हैं, शायद हम लोगों को इसे आज समझाने की ज़रूरत है। यह क्यों है? क्योंकि आज़ादी के पहले राष्ट्र की कुछ संकल्पनाएं बन रही थी। एक राष्ट्र की संकल्पना ऐसी थी जो जाति प्रधान, धर्म प्रधान, पुरुष प्रधान संस्कृति की बातें कर रही थी। और इसके हवाले जो हमें है, आप 1927 से लेके 30-35 तक के जो केसरी वर्तमान पत्र अगर आप पढ़ोगे, तिलक ने जो बनाए हैं, उनमें हमें ऐसे कुछ विधान मिलते हैं। उसके पश्चात दूसरी जो संकल्पना आई थी राष्ट्र की बनने की, वह आई थी कि एक वैज्ञानिक भारत हो, जहाँ पे हम देखते हैं नेहरू का आइंस्टाइन के साथ जो मिलाप है, भेंट है, ऐसी घटनाएं हो रही थी। तीसरी बात जब आती है तो एक कम्युनिस्ट जो इंडिया आया, साम्यवाद के आधार पर देश बनने की बातें हो रही थी। 25 से 35 तक यह चर्चाएं अपने देश में हो रही थी आज़ादी के पहले। और तब उस साम्यवाद में उन्होंने ऐसा मॉडल देश के आगे रखा कि जो कामगार वर्ग है, जो प्रोलेटेरियन जिसे कहते हैं, जो कामगार वर्ग है वो कामगार वर्ग इकट्ठा आना चाहिए, और जो मक्तेदारी है, कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं, पूंजीवाद, वह नष्ट होना चाहिए, और फिर एक समान आर्थिक मूल्य के आधार पर देश बनना चाहिए। तब बाबा साहब कहते हैं, या बाबा साहब के राइटिंग से हमें यह समझ में आता है कि वह लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ का जो उच्च वर्णीय गरीब है वो यहाँ के निचले जातियों के जो गरीब है वह सामाजिक समानता में वो गरीबी नहीं आती जा सकती, क्योंकि यहाँ का जो कर्मजीवी जो व्यक्ति है, कर्मजीवी जो समाज है, वह विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, वह जातियों में बटा हुआ है, वो मात्र गरीब कहने से वो इकट्ठा नहीं आता है, वो जातियों में बटा हुआ है, तो जाति के आधार पर ही वो इकट्ठा आता है, जाति के आधार पर ही उसकी सामूहिकता दिखती है। इसलिए कभी कभी यह बुरा भी लगता है कि बाबा साहब के जयंती मनाने का ठेका केवल किसी विशिष्ट समाज ने नहीं लिया है, यह इस देश की जिम्मेदारी है, यह इस देश की यानी गरिमा है कि जिसको हमने सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर मेरा जो परिचय दिया, मैं तो बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ, आई एम अ वेरी स्मॉल मैन, लेकिन उन्होंने मेरा परिचय देते हुए बताया कि ये कहाँ सीखे, इन्होंने किसने पीएचडी किया, वैसा ही किसी व्यक्तिमत्व को हम जानने की यानी चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं भी किसी का परिचय दूंगा तो इन गुण विशेष को आगे रखकर मैं उनका परिचय दूंगा। वैसा ही किसी देश का अगर सम्मान करना है दुनिया में, तो वहाँ के जो गुण विशेष या गुणवत्तापूर्ण जो महान व्यक्ति है उनसे वो देश सस्ता है, वो उसका रत्न है, इसलिए वो भारत रत्न है, वो एक भारत का रत्न है, वो एक हीरा है, वो एक ज्वेल है, उस ज्वेल को हमें समझना होता है, इसलिए वो ज्वेल किसी विशिष्ट समाज के पास ही रखा रहे, उसी का ही वो है, ऐसा ही उसी का नेता है, ऐसी धारणाएं हमारी नहीं होनी चाहिए। हमने बाबा साहब की जो विचार है, उनकी जो दृष्टि है, उसको गहराई से समझकर आज जो जातिवाद या किसी भी वाद हो, धर्मवाद हो, कोई भी वाद हो, उस इज्म से मुक्ति के लिए बाबा साहब कैसी दवाई है, कैसा वह समाधान है, इसको समझना आवश्यक है। तो इस लोकतंत्र में अगर सभी समाज और नागरिकों को समान अधिकार नहीं मिलेंगे तो शायद हम बाबा साहब का सपना पूरा हो गया ऐसा नहीं समझ सकते, नहीं तो हम लोकतंत्र का मात्र ढोंग ही करेंगे। हमें केवल लगेगा मैं भी डेमोक्रेटिक हूँ, आप भी डेमोक्रेटिक है, लेकिन वो डेमोक्रेसी अनुभव में आनी चाहिए, वो कोई आसमान में बैठी हुई कल्पना नहीं है, वो कोई चांद में बैठा हुआ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ के दिलों में वो जिंदा होना चाहिए, उन मूल्यों में वो जिंदा होना चाहिए। तो फिर वो मूल्य क्या है? वो मूल्य है समता, स्वतंत्रता और बंधुता। लेकिन ये केवल शब्द नहीं है भाई और बहनों, आज थोड़ा सा मैं आपको इन शब्दों की शिक्षा देना चाहूंगा कि समता मतलब बरबर सगड़े लोग समान है, बंधुता मतलब सगड़े जन बंधु तुम्हें कसी आता ही बंधुता नहीं, उसको बंधुता नहीं कहते। निश्चित रूप से एक एट सरफेस एक सुपरफिशियल बंधुता वो है, सबसे मान सम्मान का बात करना, सबके साथ एक आदर रूप में रहना, इसे हम बंधुता कह सकते हैं। लेकिन यह त्रिकोण है, त्रिकोणाची आकृति माहिती है तुम्हाला, उसके मुख्य जो मूल्य है वह है स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता वह होती है जहाँ जो व्यक्ति जो व्यवसाय करना चाहे, जिस शिक्षा को लेना चाहे, जिस मूल्य को जीना चाहे, जैसा जीवन जीना चाहे, जो नौकरी करना चाहे, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहे, उसके लिए वह स्वतंत्र होना चाहिए, वो स्त्री हो या पुरुष हो। ती स्त्री आहे म्हणून चूल आणि मुलापर्यंतच तिनं राहावं ही त्याची समज असू नये, ही मनुस्मृतीची समज आहे। की मुलगी जर जन्माला आली तर ती बापाच्या म्हणजे अंडर असावी, नंतर भावाच्या, पतीच्या आणि नंतर परत मुलाच्या, जन्मापासून मृत्यूपर्यंत तिनं गुलाम राहावं, ह्या ज्या संकल्पना आहेत त्या संकल्पना मनुस्मृतीच्या आहेत। वो संकल्पनाओं की बात स्वतंत्रता नहीं कहलाई जा सकती, उसे स्वतंत्रता नहीं कहते। और वैसा ही पुरुषों के साथ भी नहीं होना चाहिए, वो किसी विशिष्ट समाज से, किसी विशिष्ट जाति से, किसी विशिष्ट धर्म से है, इसलिए उसका ऑक्यूपेशन, उसका व्यवसाय, वो मरे हुए जानवर ढोए या चमड़े का व्यवसाय करे, या तेली है तो तेल निकाले, कुंडी है तो हल चलाए, वैसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। उसकी जो क्षमता है, उसकी जो योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर उसका विकास होना चाहिए, ऐसा वातावरण अगर समाज में है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? जब तक वो औरों के अधिकार का हनन नहीं करता, जब तक वह औरों को हिंसाएं नहीं पहुंचाता, तब तक वह स्वतंत्रता का उसने आचरण करना चाहिए, यह स्वतंत्रता है। समानता क्या है? यह दूसरा पिलर है डेमोक्रेसी का। समानता क्या है? समानता यानी इक्वेलिटी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, मराठी में अपन चला समानता मानते हैं। यह बहुत रोचक कंसेप्ट है, बहुत रोचक संकल्पना है। समानता हम लोग सब समान है ऐसा कहने से समान नहीं होते। समानता क्या होती है? समानता वह होती है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि असमानता क्या होती है। जब तक हम असमानता नहीं समझते तब तक हमें समानता समझ में नहीं आएगी। बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इस बात को भली भांति एक्नॉलेज करते हैं, पहचानते हैं कि जो समानता है वह निश्चित रूप से एक उपन्यास या कहानी जैसे हो सकती है, जिसे अंग्रेजी में फिक्शन कहते हैं। इक्वेलिटी में साउंड लाइक अ फिक्शन, जैसा डॉक्टर अम्बेडकर से ही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। लेकिन यह स्वाभाविक है कि हम में से हर एक व्यक्ति विभिन्न परिवार में पैदा हुआ है। यहाँ के लोग या महाराष्ट्र में इतनी विविधता है कि जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ के लोगों के स्वभाव, खाना पीना, रहन सहन, उनकी अमीरी गरीबी। मुंबई में जब मैं आता हूँ और देखता हूँ लोगों को, बड़ी बड़ी इमारतें, कारें और पैदल चलने वाले लोग, लोकल में यात्रा करने वाले लोग, ये जो विविधता हम समाज में देखते हैं तो यह स्वाभाविक है। तो हम हमारे विरासत से, हेरिटेज जिसे हम कहते हैं, हमारे पैदाइशी गुणों से या हमारे लिंग से या वर्ण से हम समान ही होंगे ऐसा नहीं। किसी का रंग अलग है, किसी का लिंग अलग है, किसी की शैक्षणिक योग्यताएं अलग है। बाबा साहब कहते हैं यह स्वाभाविक है, यह नेचुरल है। यह हर आदमी 90% 98% लेकर जरूरी नहीं है, लेकिन वही एक उसकी योग्यता है, इसीलिए वह सर्वश्रेष्ठ है ऐसा मानना भी गलत है। इसके उदाहरण बहुत है, बिल गेट्स का उदाहरण ले लीजिए, इवन आइंस्टाइन का उदाहरण ले लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर का उदाहरण ले लीजिए, ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे। योग्यताएं भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं इट इज ट्रू दैट इनइक्वालिटी इज बाय हेरिटेज बाय सो मेनी रीजंस कुड बी अनइक्वल। लेकिन यहाँ बाबा साहब सवाल उठाते हैं, शैल वी ट्रीट देम अनइक्वली? क्या हमने उनके साथ, वो असमान है इसलिए असमानता का व्यवहार करना चाहिए? इक्वलिटी मस्ट बी द गवर्निंग प्रिंसिपल। उनको पेश आने का, उनके साथ बर्ताव करने का जो तत्व है वो तत्व हमेशा ही समानता होनी चाहिए। वो गवर्निंग प्रिंसिपल जो है वो इक्वल होना चाहिए, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। इसलिए दूसरा शब्द बाबा साहब ने संविधान के प्रियम्बल में लिखा इक्वलिटी। अब यह इक्वलिटी वही नहीं रुकती है भाई और बहनों, उसके आगे भी बाबा साहब जाते हैं। मैं अक्सर यह कहता हूँ, ऐसे कई बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर पैदा हुए, लेकिन यह जो बीमारी हजारों सालों से इस देश को लगी है, जिससे यह देश का विकास रुका हुआ है, वह बीमारी का इलाज ढूंढने वाला एक ही डॉक्टर पैदा हुआ, वह है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इस बीमारी का इलाज ढूंढने वाला, इसका डायग्नोसिस करने वाला, इस क्लिष्ट समाज की नस को पहचानने वाले जो डॉक्टर है वो इस देश में पैदा नहीं हुए अभी तक, वो केवल बाबा साहब ही है। वो फिर से मैं दोहराता हूँ, मैं उनका अनुयायी हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मैं नहीं भी होता किसी विशिष्ट जात समाज प्रांत से, फिर भी मैं इस व्यक्ति का उतना ही आदर करता, इसलिए करता क्योंकि एक मनुष्य के लिए जिस विकास की, जिन बातों की आवश्यकता है, वो सामग्री, वो मटेरियल, वो मेंटल सोर्सेस, वो विचारों के सोर्सेस बाबा साहब देते हैं, इसलिए मैं उनका आदर करूंगा, एक व्यक्ति करके उनका आदर करूंगा। इसलिए नहीं कि मैं किसी तबके से या किसी जाति से या किसी देश से आता हूँ। यही कारण है भाइयों और बहनों कि वो गोरा हो या काला हो, औरत हो या आदमी हो, बाहर हो या ना हो, दलित हो या अदलित हो, ब्राह्मण हो या अब्राह्मण हो, बाबा साहब की आज इज्जत करता है, उनका सम्मान करता है। खैर वो बातें भावनिक है, उसके बावजूद भी मैं बताना चाहूंगा समानता की आगे परिभाषा बाबा साहब क्या करते हैं। मान लो इस प्रवचन के बाद आपको खाना दिया गया, लेकिन मैंने अगर ऐसा ऐलान किया कि मेरे राइट साइड में जो लोग बैठे हैं, मेरे दाहिने साइड में जो लोग बैठे हैं उनको मैं खाना दूंगा, इनको मैं खाना नहीं दूंगा, तो आपको कैसे लगेगा? जिन लोगों को मैंने बताया खाना मिलेगा उनको अच्छा लगेगा, जिन लोगों को मैंने बोला खाना नहीं मिलेगा उनको बुरा लगेगा, सही है? आपके पेट बहुत ज्यादा भरे हो तो आज रात को नहीं भी खाया तो चल जाएगा, ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन मैं अगर ऐसा कहूं कि 10 दिन तक मैं आपको खाना नहीं दूंगा, 10 दिन तक मैं इनको खाना दूंगा, तो फिर आपको कैसे लगेगा? मैं इससे भी अगर एक कदम आगे बढ़ाऊं और अगर मैं आपको बोलूं मैं 10 साल तक आपको खाना नहीं दूंगा और इनको 10 साल तक खाना दूंगा, तो फिर आपको कैसे लगेगा? एक समय ऐसा आएगा उस भूख की प्यास में, उस भूख की तड़प में, कि आप सब लोग क्या होगा उसमें, जिन लोगों के पेट खाली है, जिन लोगों को भूख लगी है, उनकी जो तड़प है, उनकी जो पीड़ा है, वो एक होगी, सही है? मुझसे श्रोते बोलूं राम नका, मैं सही कह रहा हूं? और मैं इन लोगों को बोलूं कि आपको खाना मिलेगा, तो फिर इन लोगों को आपकी जो तड़प है, आपकी जो तकलीफ है, शायद उसका एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपका वो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, आपका वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए शायद उन लोगों को आपकी तकलीफ समझना मुश्किल होगा। कुछ सिंपैथेटिक लोग आपको मिल सकते हैं। और अगर मैंने काफी देर तक आपको भूखा रखा तो वो जो पेन है, वो जो तकलीफ है, वो तकलीफ आपको इकट्ठा लाएगी, वो जो पेट की भूख है वो आपको इकट्ठा लाएगी, और वह जो एकता है वह एकता इन लोगों के खिलाफ बगावत कर सकती है, क्रांति कर सकती है। यह उसका स्वाभाविक ऑब्जर्वेशन है, यह बाबा साहब इसका विश्लेषण करते हुए बताते हैं। लेकिन उस एकता में जहां आपको पेट की भूख लगी है, जहां आप मर रहे हैं भूख से, तो ऐसे भी मर रहे हैं वैसे भी मर रहे हैं, ऐसा सोचकर आप ब्लडशेड रिवोल्यूशन जिसे कहते हैं, रक्त रंजित क्रांति जिसे कहते हैं, वो आप कर सकते हैं, उन लोगों की आप हिंसा भी कर सकते हैं, वो हिंसावादी क्रांति हो सकती है। इसे कहते हैं प्योर इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी, स्पष्ट समानता और असमानता, यह इसकी परिभाषा है। यह थ्योरेटिकल बात है, यह स्वाभाविक बात है, लेकिन इसके पश्चात हम देखते हैं बाबा साहब और आगे जाकर कहते हैं कि बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और रिलीजियस लीडर इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रेडेड इनइक्वलिटी। ये तो स्पष्ट समानता और असमानता हुई। ग्रेडेड इनइक्वलिटी का मतलब होता है स्तरीय असमानता, जो स्तर के आधार पर लोग असमान होते हैं। इस स्तरीय असमानता में क्या होता है, अगर मैं कहूं इन लोगों को खाना मिलेगा सुबह का, उन लोगों को खाना मिलेगा दोपहर का, उन लोगों को खाना मिलेगा रात का, उन लोगों को केवल नाश्ता मिलेगा और उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर मैंने ऐसा विभाजन किया तो फिर क्या होगा? तो जो यूनिटी, जो इंटीग्रेशन, सबको भूख लगी है, जिनको हो रही है, वैसी एकता वहां संभव नहीं है, क्योंकि आपका जो उत्पीड़न हुआ है वो स्तरीयकरण के आधार पर हुआ है, ग्रेडेड इनइक्वलिटी हुई है। तो किसी को विशेषाधिकार और किसी का धिक्कार, किसी को मान, किसी को थोड़ा सा मान, और किसी को अपमान और किसी को मान ही नहीं। यह जब इनइक्वलिटी होती है समाज में, तब उनका एकत्रीकरण होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ बाबा साहब संघर्ष दे रहे हैं कि जो जाति मूलक समाज है वो केवल चार वर्णों में बटा हुआ नहीं है, वो जाति है। एक आईने के सामने आप आईना रखो तो जितने आईने देखोगे उतने आईने दिखेंगे, वैसा जाति का स्वभाव है। जाति नंतर, पोट जाति नंतर, अजून कोणत्या कोणत्या जाती तो तुम्ही आता त्याचा अभ्यास करा, नुसतं ते महाराज राहत नाही तो कोसरे आहे की बावन काय आहे वगैरे वगैरे ते आहे, असं जे उपजाती आहे, ऐसे ही सभी समाजों में भिन्न भिन्न प्रकार के जो सबकास्ट है, उन लोगों की तकलीफ, उनकी पीड़ाएं, उनकी जो यातनाएं हैं, उसका भी स्तरीयकरण हुआ है। और क्या होता है, जब वह जातियां किसी पवित्र ग्रंथ से आए, उसकी सैंक्टिटी उसको रहे,
उसकी अनुमति उसको रहे, उसका एक्नॉलेजमेंट, उसके रेटिब्यूशन जिसे हम कहते हैं वह रहे और वो दैविक शक्तियों से आए, तो फिर इंसान कौन होता है उसे बदलने वाला? आपके हाथ में कोई भी अधिकार नहीं है कि जो शास्त्रोक्त मान्यताएं है और दैविक अनुमति जिसको दी गई है, तो फिर इंसान कौन है उसे बदलने वाला? वह इंसान बदल नहीं सकता, यानी उस व्यवस्था को इंसान बदल नहीं सकता। यह है बाबा साहब ने ग्रेडेड इनइक्वालिटी की व्याख्या की है। तो यह है समानता। तो जब मैं समानता कहता हूं तो यह समानता एक क्रांतिकारी शब्द कहलाता है, जहां मैं सबके समान होने की बात कर रहा हूं, किसी भी स्तरीयकरण को मैं नकार रहा हूं, किसी भी प्रकार के विभाजन को मैं नकार रहा हूं। निश्चित रूप से वो अलग अलग हो सकते हैं, उनकी क्षमताएं अलग अलग हो सकती है। कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई पेंटर हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, कोई आईएएस हो सकता है, कोई आईपीएस ऑफिसर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा प्रवचनकार हो सकता है, कोई भिक्षु हो सकता है, ब्रह्मचारी हो सकता है, वगैरह वगैरह। ऐसे अलग अलग उनकी क्षमताएं हो सकती है, लेकिन वो जो स्तरीय ऐसा मानता है वो कभी भी हमारे समाज को इकट्ठा नहीं आने देती। और ये जो डिवाइडेशन है, ये जो स्तरीयकरण है, वो हमारे मन में है। इसलिए बाबा साहब दूसरा विधान करते हैं, कास्ट इज नथिंग बट नोशन ऑफ माइंड, इट्स नॉट अ थिंग लाइक अ वायर। ये किसी वायर के जैसी नहीं है, कोई रस्सी नहीं खींची गई है समाज में, जहां आपको जाति के आधार पर ऐसे ढांचे बनाए गए हैं। हमारे मन में हमने वो संकल्पनाएं हजारों सालों तक पाली है। वो नीलगंड जो है जाति के आधार पर, कि मैं विशिष्ट तबके से आता हूँ, विशिष्ट इकोनॉमिक क्लास से आता हूँ या कास्ट क्लास से आता हूँ, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस या मेरा आत्मविश्वास ऐसे होगा, मैं ऐसे ऐसे समाज से आता हूँ इसलिए मेरा आत्मविश्वास वैसा होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसका संबंध उसके जाति से नहीं है। मैंने बहुत विद्वान ब्राह्मण देखे हैं, मैंने बहुत मूर्ख ब्राह्मण भी देखे हैं, मैंने बहुत विद्वान दलित भी देखे हैं, मैंने बहुत मूर्ख ब्राह्मण दलित भी देखे हैं। इसका संबंध किसी विशिष्ट जाति से नहीं है। वो आपके प्रयास, आपकी क्षमता और आपके जो जिसे स्किलफुल लेबर कह सकते हैं, कितने अच्छाई से आपने कोशिश की है किसी व्यक्ति को बनने के लिए, इससे हो सकता है। भाइयों बहनों, एक बहुत ही संवेदनशील उदाहरण मैं आपको बाबा साहब के जीवन से बताऊंगा। बाबा साहब जब छोटे थे, जब बालक थे, तो उनके जो भाई थे, यानी ये 1954 की बात है, जब 1,80,000 रुपए की गठरी बाबा साहब के चरणों में उनके अनुयायी ने रखी थी दिल्ली में, जब वो पैसा बाबा साहब को दिया गया तो बाबा साहब खड़े हुए और बहुत भावनिक थे, जज्बात से भरे हुए थे, क्योंकि तब वो बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी उस वक्त। आप समझिए, जहाँ समाज आपका अमीर नहीं है, जहाँ लोग अमीर नहीं है, वो हर चीज को बेच कर या दान खड़ा करके, जैसे हम लोग करते हैं या अन्य लोग करते हैं, उस प्रकार से वो दान बाबा साहब के आगे उन लोगों ने रखा। बाबा साहब खड़े हुए और बोलना शुरू किया। बाबा साहब ने कहा, ये मी आता बैरिस्टर झालेलो आहे, माझ्या समाजात मी फक्त एकटाच बैरिस्टर आहे, आणि हे पैसे मी स्वीकारू नये अशी माझी नीतिमत्ता मला सांगते, ही त्यांचे शब्द आहे। माझी नीतिमत्ता मला असं सांगते की मी माझ्या गरीब आणि अशिक्षित जनतेकडून हे पैसे का स्वीकारावे, असं बाबासाहेब म्हणजे त्यांचं संभाषण सुरू करतात। आणि तेव्हा ते म्हणतात की जेव्हा मी लहान होतो तेव्हा मी लठ्ठ होतो, म्हणजे गुबगुबीत होते बाबासाहेब लहानपणी, तर लठ्ठ असताना माझ्या आईने जेव्हा मला जन्म दिला तेव्हा तिला खूप त्रास झाला, असं माझ्या बाबांनी मला सांगितलं, असं बाबासाहेब म्हणतात। आणि जेव्हा मी काय म्हणतात त्याला किशोर वयात आलो, टीनेज ज्याला आपण म्हणतो, तेव्हा मी लठ्ठ असल्यामुळं आणि मी खोडकरही होतो, हे तुम्हाला माहीत असेल, बाबासाहेब थोडेसे खोडकर होते, खोडकरही असल्यामुळे माझे भाऊ बंद मला असं म्हणायचे की हा काही करू शकत नाही, याचं काही होऊ शकत नाही, त्यांनी आईला त्रास दिला याच्यामुळं आई गेली, वगैरे वगैरे, असं त्यांचे जे भाऊ आहेत टोमणे मारायचे बाबासाहेबावर। आणि नंतर जी भूमाई म्हणजे त्यांची जी मावशी होती त्यांनी जे संगोपन केलं बाबासाहेबांचं, तर ती इतर भावंडांना म्हणायची की अरे तुम्ही त्याला तसं खेळू नका, त्याला तसा त्रास देऊ नका, त्याची आई नाही, तो बिना आईचा आहे, त्याला जसं वाटतं तसं करू द्या, तो काहीतरी करेल, अशी समजूती इतर भावंडांची काढायची. तेव्हा बाबासाहेब म्हणत होते की काश आज मेरे भाई लोग देखते की मैं इस देश को क्या दे रहा हूं, इस देश के लिए मैं क्या कर रहा हूं, काश वो लोग आज जिंदा होते, कारण की एकही त्यांचा भाऊ किंवा बहीण किंवा जे काही इतर त्यांचे सिबलिंग्स होते ते जिवंत राहिले नाही, आई पण राहिली नाही, बाबा पण राहिले नाही. म्हणजे इतक्या यातनांच्या पराकाष्ठे पण जेव्हा त्यांची जी बुद्धिमत्ता होती लहानपणी, ते इंटेलिजंट होते, बुद्धिमान होते लहानपणापासून, पण त्यांना 100 पैकी 100 मार्कच मिळत होते असं नाही. आता मी त्यांना 10वीत किती पर्सेंटेज होते हे सुद्धा मला माहीत आहे, पण मी आता त्याचा उल्लेख तर करत नाही. स्वतःच्या कर्तबगारीतून जो व्यक्ती घडला तो व्यक्ती नुसत्या न्यूनगंडातून घडला असं नाही, न्यूनगंडाच्या वर जाऊन तो व्यक्ती घडला हे आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ही उन्होंने तभी तोड़ दिया था, और तब वो कह रहे आज इस बैरिस्टर को वो लोग देखते, आज वो बैरिस्टर को ये लोग देखते और देखते कि मैं क्या कर रहा हूँ. यह विधान बाबा साहब ने कहा, अरे ही जी सहानुभूति होती, ये जो सहानुभूति थी, यह सहानुभूति मैं अन्य समाज तक पहुंचाना चाहता हूँ, अन्य समुदाय तक ले जाना चाहता हूँ, जैसा मैं आपके लिए महसूस कर रहा हूँ वैसा ही मैं सभी समाज के लिए महसूस करना चाहता हूँ, ऐसा बाबा साहब कहते हैं. तब हमें समझ में आता है कि बाबा साहब यह जो लोकतंत्र के जो मुख्य मूल्य है, एक स्वतंत्रता और दूसरी समानता, उसकी नींव बाबा साहब किस पे रखते हैं, बंधुता पे रखते हैं. क्यों बंधुता पे रखते हैं, तुम्हें विचारांची खोली का, विचारांची बस का, त्या बंधुतेवर त्यांनी त्यांचा पाया का ठेवला, त्याचे दोन कारण आहे. ते त्याचे दोन कारण सांगताना म्हणतात की जब तक लोकतंत्र मे क्वालिटी ऑफ युनिटी नहीं होगी, यह पहला गुण बताते हैं बाबा साहब. लोकतंत्र के दो गुण होते हैं, पहला है क्वालिटी ऑफ यूनिटी, केवल लोगों का समुदाय नहीं, केवल जन सैलाब नहीं, केवल लोगों को फुसला कर बहला कर झूठे वचन देकर इकट्ठा लाकर उनके मत मांगना नहीं, उनकी क्वालिटी ऑफ यूनिटी चाहिए. वो जब लोग इकट्ठा आते हैं तो एक समूह करके एक ताकत बननी चाहिए जिसके आधार पर सरकार का निर्माण हो, उन लोगों का मत के आधार पर वो सरकार काम करे, म्हणून लोकांनी लोकां करून लोकांसाठी चालवलेलं जे राज्य आहे लोकशाही म्हणतात, तो लोकांचे राज्य आहे, तो लोकतंत्र आहे. इन लोगों का जो समुदाय है, जो इकट्ठा होने की प्रक्रिया है, वह उनकी जातियों को तोड़कर केवल नागरिक या केवल इंसान या केवल उस देश की जनता करके ही वो इकट्ठा है, ऐसा होना चाहिए. वह उसकी जो नींव है वह धर्म नहीं होना चाहिए, और उसकी नींव जात नहीं होनी चाहिए. धर्म क्या है, ये बहुत बड़ा विषय है, उसके लिए मुझे दूसरा व्याख्यान लगेगा, लेकिन इसलिए मैं अभी नहीं बता पाऊंगा. वह क्वालिटी ऑफ यूनिटी चाहिए. दूसरा गुण बाबा साहब बताते हैं, म्यूचुअल सिंपैथी, परस्पर सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति अगर कोई भी अन्याय होता है, कोई भी जुल्म अगर होता है, किसी के भी साथ अगर अन्याय होता है इस देश में, तो हमें उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए. तो अगर एक रहित वमीला होता है तो वो विशिष्ट तबके का है, इसलिए वो उनका प्रॉब्लम है, ऐसा भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए. कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है, किसी भी समाज से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, उसकी सहानुभूति हमारे मन में आनी चाहिए कि इतने संघर्ष से कोई व्यक्ति उच्च विश्वविद्यालय तक जाता है और पढ़ाई करता है और एक साइंटिस्ट बनता है. अगर आप उसका सेंटेंस देखोगे, उसके डेथ सेंटेंस में उन्होंने लिखा है कि आई एम अ पार्ट ऑफ स्टार डस्ट बट कास्ट मेड मी डस्ट. इस विधान का अर्थ क्या होता है, स्टार डस्ट मतलब तारों का जो धूल होती है, मतलब जो पूरा विश्व है, ब्रह्मांड है, उसका ही मैं एक हिस्सा हूं जैसे अन्य लोग, तो अन्य लोग जैसे हिस्सा है इस विश्व के, इस समाज के वैसे मैं भी एक हिस्सा हूँ, बट कास्ट मेड मी अ डस्ट, लेकिन जाति ने मुझे मातृधूल बनाया है। तो यह जाति मूलक सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, समुदाय मूलक सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, वह सहानुभूति इंसानियत मूलक होनी चाहिए, समानता मूलक होनी चाहिए, स्वतंत्रता मूलक होनी चाहिए, बंधुता मूलक होनी चाहिए, वह सहानुभूति म्यूचुअल संपत्ति कहलाती है। तो किसी के भी साथ अन्याय अत्याचार हो, हमें उसको प्रतिसाद देना चाहिए, हमें उसके खिलाफ लोगों को बताना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, यह गलत बात है, यह बिल्कुल सामान्य विचार है, इसमें समझ या इसमें पीएचडी नहीं लगती है, इसमें बहुत उच्च शिक्षाएं लगती है, ऐसा नहीं है। बंते संरक्षित एक बात कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल्स की या तत्वों की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें गहरी समझ की आवश्यकता है। तो समता स्वतंत्रता बंधुता ही क्यों ना हो, उसको गहराई से समझने की आवश्यकता है, तभी यह सच्चा लोकतंत्र हो सकता है। तो इस असमानता या अबंधुता या अस्वतंत्रता के आधार पर अगर किसी राष्ट्र का निर्माण हुआ तो वह सच्चा राष्ट्र नहीं हो सकता है। तब बाबा साहब फर्क करते हैं कि राष्ट्रवाद पर जब वो भाष्य करते हैं तो वो कहते हैं कि आई डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फ्रीडम ऑफ पीपल एंड फ्रीडम ऑफ कंट्री। फ्रीडम ऑफ कंट्री और फ्रीडम ऑफ पीपल, देश अपने आप में कोई देश नहीं होता है, देश बनाना होता है, घर ऑटोमेटिक होता है, तुमच्या घरात प्रेमाचे संबंध असले पाहिजे, आई वडिलांचे संबंध असले पाहिजे, बायको पोरांचे संबंध चांगले असावेत, भावा बहिणींचे संबंध चांगले असावेत, त्याला आपण घर म्हणतो, नाहीतर त्या नुसतं भिंती होती। तर अशी पॉलिटिकल बाउंड्री जी असते एखाद्या देशाची, अशा ज्या भिंती आपल्या आहेत, त्या भिंतीत जर वाद असेल, त्या भिंतीत जर द्वेष फोपावत असेल, त्या भिंतीत जर मैत्री फोपावत नसेल, तर तो खरा देश होऊ शकत नाही। बाबासाहेब काय म्हणतात, इट्स अ कल्चरल होम, सांस्कृतिक घर, लॉन्गिंग टू बिलॉन्ग, जिसे अपनाने की चाह होनी चाहिए, उसको मैं देश समझता हूँ, इसलिए वहाँ के लोगों की स्वतंत्रता की मैं बात करता हूँ, ऐसी बाबा साहब कहते हैं। 1945 में 14 अक्टूबर 1945 में बाबा साहब ने खत लिखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उस खत में बाबा साहब ने बोला था, आई डोंट हैव टू ज्वाइन अ कांग्रेस टू प्रूव माय लव फॉर नेशन, किसी राजनीतिक पार्टी को सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है मेरी देशभक्ति मुझे बताने के लिए, आई एम अ ट्रू नेशनलिस्ट, आई एम अ ट्रू पैट्रियट, आई एम अ ट्रू लवर फॉर दिस नेशन, आई एम फाइटिंग फॉर द फ्रीडम फॉर द पीपल, यह बाबा साहब ने कहा था। तो किसी भी सत्ता का हिस्सा होना उस देश के भक्ति को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, जब मैं उसको कल्चरल होम कहता हूँ, जब मैं उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कहता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि ये आपका घर होना चाहिए, तो एक बच्चे पर अन्याय और दूसरे बच्चे को बहुत सारा खाना देना, वो घर कहलाएगा क्या? किसी को शिक्षा और किसी को अशिक्षा, यह घर कहलाएगा क्या? किसी को विकार और किसी को सर्वाधिकार, यह घर कहलाएगा क्या? वो घर नहीं कहलाया जा सकता। वो घर तभी कहलाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया लोकतंत्र को बताते हुए, सभी नागरिक उस देश के भाई बहन जैसे है, वह बंधुता है, वह उसकी राष्ट्र की नींव होनी चाहिए। तो अगर किसी एक व्यक्ति के सदस्य के ऊपर जैसा हम अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते, वैसे ही किसी भी तबके के ऊपर जो अन्याय होता है उसे हमने बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, तब तक वहाँ शांति प्रस्थापित नहीं हो सकती। तब मैं यहाँ सवाल उठाता हूँ, तब मैं यहाँ आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको अराष्ट्रवाद घोषित करना है, लव फॉर नेशन, नेशनल या एंटी नेशनल अगर बताना है, तो कहिए कि कास्ट एंटी नेशनल है, कहिए किसी का रेप एंटी नेशनल है, कहिए किसी को अधिकार नहीं दिए जाते शिक्षा के वो एंटी नेशनल है, अनइक्वल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी एंटी नेशनल है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर और कोई फकीर बन रहे हो, कोई केवल गरीब बन रहे हो, वो एंटी नेशनल है। अगर वो समानता वहाँ असमानता और समानता की दूरी कम करने के प्रयास नहीं होंगे वो एंटी नेशनल है। वो दूरी हम बढ़ा नहीं सकते। अगर वो दूरी हम बढ़ाएंगे तो निश्चित ही एक अव्यवस्था या जो मैं कहूंगा कि जो सुव्यवस्था है वो वहां प्रस्तापित नहीं हो सकती। इसलिए डेमोक्रेसी के लिए होमोजीनियस सोसाइटी एक सम्मिलित समाज का होना आवश्यक है। कम से कम वो प्राथमिक आधार पर उसके प्रयास सरकार ने करने चाहिए, यह बाबा साहब कहते हैं। इसलिए बाबा साहब का केवल एक ही कोटेशन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा जो उन्होंने 1939 में दिया था। 1939 में बाबा साहब कहते हैं कि अगर वहां के लोगों की स्वतंत्रता नहीं होगी तो आई एम अ पार्ट अपार्ट, मैं हिस्सा होकर भी इस देश का हिस्सा नहीं हूँ। आई डोंट हैव अ होमलैंड, मेरी मातृभूमि नहीं है। ये आपको सबको पता होगा, ये बाबा साहब ने कहा है। ये इसीलिए उन्होंने कहा है, ये इसीलिए उन्होंने कहा है कि यहाँ पे एक कुत्ते या बिल्ली को पानी पिया दिया जाता है उसके साथ सम्मान का व्यवहार होता है, लेकिन इंसानों को उसके साथ व्यवहार नहीं होता है। इसलिए प्राणी का मोल करना आवश्यक है, मैं उनको नकार नहीं रहा हूँ। किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो गाय हो या कुत्ता हो या बिल्ली हो, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्राणी के साथ साथ किसी इंसानों की भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर भी अन्याय नहीं होना चाहिए। किसी को भी इस प्रकार का हिंसात्मक अन्याय होना अराष्ट्रवादी है, वो एंटी नेशनल है। तब बाबा साहब कहते हैं कि मुझे अक्सर गलत समझा गया है, बाबा साहब को देशद्रोही भी कहा गया है, यानी जो सच्चा देशभक्त है, जो घर को सुधारना चाह रहा है, जो समाज को सुधारना चाह रहा है, जो इस देश में स्वतंत्रता प्रस्तावित करना चाह रहा है, जो इस देश में जाति विहीन समाज निर्माण करना चाह रहा है, एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र निर्माण करना चाह रहा है, उसको आप देशद्रोही कहते हो। यह पॉपुलिस्ट ओपिनियन के बड़ी या उसके विक्टिम यहाँ की जनता नहीं होनी चाहिए। तब बाबा साहब कहते हैं कि मुझे यह अभी चिंता है, विल पीपल कीप देयर क्रीड अबाउट द कंट्री और कंट्री अबाउट द क्रीड, क्या लोग जनता के ऊपर जात रखेंगे या जात के ऊपर जनता रखेंगे, इसकी मुझे चिंता है। उसको वो ईरा ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। तब कहते हैं मुझे अक्सर गलत समझा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं अपने देश से बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इस देश को यह भी साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मेरी एक और भी निष्ठा है जिसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ, और यह निष्ठा है जिन लोगों को अन्याय होता है, जो अस्पृश्य समुदाय है, उसके प्रति जहां मैंने भी जन्म लिया है, उस समुदाय के प्रति जिनके साथ अन्याय होता है, जो अस्पृश्य है, जिसमें मैंने भी जन्म लिया है। इस सदन में मैं पुरजोर कहना चाहता हूं, यह पार्लियामेंट में बाबा साहब बात कर रहे हैं, इस सदन में मैं पुरजोर कहना चाहता हूं कि जब कभी देश के हित में और अस्पृश्यों के हित में टकराव होगा तो मैं निश्चित ही वहां के लोगों के न्याय का लोगों के न्याय को मैं प्राधान्यता दूंगा। जब कभी भी कोई भी अस्पृश्य के हित को तहरीज देकर अगर कोई आततायी बहुमत मतलब ज्यादातर लोग चिल्ला रहे हैं इसलिए उसको कहते हैं आततायी बहुमत, ऐसा कोई भी आततायी बहुमत देश के नाम पर बोलता है तो मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। केवल देश का ढोल बजाकर देश सुखी नहीं होता, वहां के लोगों के सुखों की कल्पना हमें समझनी होगी, वहां के लोगों की पीड़ाएं हमें समझनी होगी, तब वह सच्चा देश बनता है। मैं किसी पार्टी का समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं करूंगा कि वे देश के नाम पर बोल रही है, जो यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वे सभी मेरी भूमिका को समझ लें। जब मेरे और देश के हित में टकराव होगा तो मेरी जान पर खेलकर मैं देश के हित की बात करूंगा, यह सच्ची राष्ट्रभक्ति है। जब मेरे और राष्ट्र के हित में टकराव होगा तो मैं मेरे जान पर खेलकर राष्ट्र हित की बात करूंगा, लेकिन अगर देश और उनके लोगों के वर्गों के बीच अगर टकराव होगा तो मैं लोगों को तहरीर दूंगा, वहां के जो लोग हैं उन लोगों को मैं सुखी करने की बात करूंगा, इसे कहते हैं ह्यूमैनिज्म। तो देश को कल्पना नहीं है, वहां के नागरिकों को उस समानता का अनुभव आना यह है। इसमें फर्क करना चाहिए नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म में। राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति यह दो अलग अलग शब्द है। देशभक्ति वो होती है जो घर से प्यार करता है। अगर जो घर से प्यार करता है तो घर की बुराई निकालने के लिए वो कोशिश करता है। इसलिए करता है घर की बुराई निकालने के लिए, क्योंकि वो घर अच्छा हो। तो वहां जो गलत हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, उसके प्रति वो उन लोगों को बताने की कोशिश करता है। घर में अगर बड़ा बच्चा या बच्ची है तो वो बताती है अपने माँ बाप को कि माँ या डैडी ये बातें ठीक नहीं है, घर में ये ऐसी होनी चाहिए। इसका मतलब वो घर को तहस नहस करना चाहती या चाहता है, ऐसा नहीं होता है। देशभक्ति में यह अधिकार होता है कि जो आप उसके हित के लिए हो, उसके हित की बात करने की साहस रखे, क्षमता रखे। उस देश हित की बात बाबा साहब कर रहे थे, इसलिए नहीं कि आप मेरे साथ नहीं हो तो आप देश के दुश्मन हो, ऐसे उसकी परिभाषा नहीं हो सकती। इफ यू आर नॉट विथ मी देन यू आर विथ एनिमी। ऐसी जो पोलराइज सिरे की जो भावनाएं हैं वह देशभक्ति नहीं कहलाती। यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। इसलिए भाई और बहनों, जो तीसरी नियम है बंधुता, वह बाबा साहब ने रखी। और उस बंधुता को बाबा साहब ने उस पार्लियामेंट डिबेट में कहा है, आप वॉल्यूम तेरा पढ़ लीजिए। वहां पे बाबा साहब कहते हैं कि यह बंधुता शब्द भी पर्याप्त नहीं है लोकतंत्र को समझाने के लिए। यह जो शब्द है, यह शब्द मैंने किसी पॉलिटिकल हिस्ट्री से या किसी राजनीतिक इतिहास से उठाया नहीं है। इस लोकतंत्र को समझाने का सबसे सर्वोच्च उदाहरण मुझे इसी सभ्यता में, इसी इतिहास में मिला है, और वो शब्द मैंने बुद्ध से लिया। वो शब्द है मैत्री। मैत्री केवल तू मेरा दोस्त और मैं तेरा दोस्त, ऐसा नहीं होता है। मैत्री का अर्थ होता है आपके प्रति अगर मेरी मैत्री है, सहानुभूति है, तो वो जो समानता या स्वतंत्रता के खिलाफ अगर बातें होती है तो मैं वो महसूस करता हूँ, उसे मैत्री कहते हैं। एक म्यूचुअल बॉन्ड, तुम्हारे मेरे बीच एक लगाव, एक नागरिक करके लगाओ, एक देशवासी करके लगाओ, एक देशभक्त करके लगाओ होता है, वो बुद्ध के मैत्री की बात बाबा साहब करते हैं। आई डिड नॉट बोरो द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आई बोरोड इट फ्रॉम माय मास्टर द बुद्ध, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। यह केवल तब तो बाबा साहब बौद्ध हुए भी नहीं। जब किसी पार्लियामेंट में विधान दिया जाता है, वह विधान राष्ट्र विधान कहलाता है। वह विधान राष्ट्र विधान कहलाता है, वो किसी तबके का विधान नहीं कहलाता, किसी विशिष्ट समुदाय का विधान नहीं कहलाता। वो व्यक्ति समूचे देश के लिए बात करता है, इसका वह अर्थ होता है। इसलिए वो टाइप किया जाता था हर एक विधान को। आज भी जो पार्लियामेंट डिबेट्स होते हैं, जो भी चर्चा होती है, वो सारी रिकॉर्डेड होती है, क्योंकि वो विधान आप देश के लिए दे रहे हो, ये जिम्मेदारी आपके खानों के ऊपर होती है। सोचिए भाई और बहनों, बाबा साहब इस देश को कहाँ ले जाना चाहते थे, किस ऊंचाई पर ले जाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने कहा यह शब्द मैंने बुद्ध के विचारों से लिया है, उनके शिक्षा से लिया है, मैत्री से लिया है। और इसका उदाहरण मैं आपको ले जाता हूँ मेरे वक्तव्य के अंतिम भाग में। बाबा साहब ले जाते हैं बुद्ध को रोहिणी के तट पर, जब सिद्धार्थ थे। आपको पता होगा सिद्धार्थ के जीवन में एक वाक्य ऐसा आया जहां उनको दो सेनाओं का सामना करना पड़ा, कोलियों और शाक्यों की सेना का, और वो रोहिणी नदी का जो पानी था उसका वो संघर्ष था। ये कहानी आपको पता होगी, अब मैं इस कहानी को नहीं बताऊंगा। उस रोहिणी नदी के पानी के झगड़े के लिए एक शाक्य और कोलियों की सेना इकट्ठा हुई थी, और वह युद्ध करना चाहती थी। वहां सिद्धार्थ जाते हैं और कहते हैं मैं इस युद्ध का सहभाग, इस युद्ध में मैं सहभागी नहीं होगा। यह बहुत बड़ा विधान बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने तब किया, क्योंकि अगर आप शाक्यों की सेना के सदस्य हो, शाक्य संघ के सदस्य हो, और फिर अगर शाक्यों पे जो आपत्ति आती है उसमें अगर आप सहभाग नहीं लेते हो तो आपके ऊपर भविष्य डाला जाएगा, ऐसी वो पट थी। तो बुद्ध के ऊपर बहिष्कार या सिद्धार्थ राजकुमार के ऊपर बहिष्कार डाला जा सकता था या ऋषि, बिकॉज ही वॉज अ प्रिंस, वो राजकुमार थे, इसलिए स्ट्रेट का एक रिस्पेक्ट था उनके पास। तो बुद्ध ने वहां सवाल किया कि आपके शरीर में जो खून बह रहा है, आपके शरीर में जो लहू बह रहा है, उसकी गुण महत्वपूर्ण है या इस नदी की गुण महत्वपूर्ण है? यह सवाल बुद्ध ने किया और तब बुद्ध ने बताया, सब सेना ने जवाब दिया कि इस लोगों में जो खून बह रहा है वह महत्वपूर्ण है। तो बुद्ध ने कहा हमें युद्ध नहीं चाहिए, आज भी इस देश को इस संदेश की उतनी ही आवश्यकता है, हमें युद्ध नहीं चाहिए, यह शांति प्रधान देश है। तब बुद्ध ने बताया 2+2 यानी शाक्य से 2, कोने से 2, ऐसे 2 लोग लीजिए और 1 न्यूट्रल आदमी लीजिए, इन 5 लोगों का संघर्ष कीजिए, डायलॉग कीजिए और उस डायलॉग से आप समाधान निकालिए। बुद्ध ने वहां सुझाव दिया। इस वाक्या को कोट करते हुए, इस प्रसंग को, इसका संदर्भ देते हुए बाबा साहब कहते हैं कि एन एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट न्यू टू इंडियन सिविलाइजेशन, द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट बी फाउंड इन द बुद्धाज संघा, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बुद्ध के संघ में इसकी नींव थी, जहां पर सच्ची स्वतंत्रता, समता और बंधुता आचरण की जाती थी, इसलिए मैंने बंधुता बुद्ध के संघ से लिया है। भाई और बहनों, तब इस लोकतंत्र का इस सभ्यता और इतिहास से बाबा साहब संबंध जोड़ते हैं। अंततः मैं यही एक बात बताऊंगा और रुकूंगा। 14 अप्रैल हर साल आता है, 7 साल से 14 अप्रैल आ रहा है, कुंती जयंती 126वीं जयंती है, 126 साल से 14 अप्रैल आ रहा है, लेकिन एक बात को भूलिए मत कि हर साल बाबा साहब पैदा नहीं होते। वो कहते हैं तब कहा हजारों साल वो राह देखती है तब कोई जीरावार पैदा होता है, ऐसा जीरावार रोज रोज पैदा नहीं होता, हर साल पैदा नहीं होता। आज आपकी जो जरूरत है, आज इस देश की जो जरूरत है, उसको उतने ही कटिबद्धता के साथ, उतने ही आत्मविश्वास के साथ, उतने ही कन्विक्शन के साथ, तत्वों के साथ बताने वाला व्यक्ति बार बार नहीं आता है, इसलिए एक व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता है। जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, तब अपने करीबी अनुयायियों को जब उन्होंने बुलाया 26 अलीपुर रोड में 1954 में, और जब घोषणा की कि मैं बौद्ध धर्म स्वीकार रहा हूँ, तब उनके करीबी अनुयायी खिन्न हो गए थे, दुखी हो गए थे। तब उन्होंने RPI का मैनिफेस्टो लिखा था, तब उनको लगा कि बाबा साहब अभी तो इलेक्शन आने वाले, हम सत्ता में आ जाएंगे तो सब समस्याएं दूर हो जाएगी, आप धर्म बीच में क्यों ला रहे हो? तब बाबा साहब ने कहा अगर मैं 57 तक जीवित नहीं रहा तो क्या होगा? अब देखिए December 56 में बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, और अगर वो दीक्षा भूमि पैदा नहीं होती तो इस भारतीय सभ्यता और इतिहास का जो आकलन है, जो समझ है, वो अधूरा रह जाता। जो सबसे बड़ी महान भेंट मैं देने जा रहा हूँ, जिससे आपकी मानसिक गुलामी नष्ट होगी, वो भेंट अधूरी रह जाती, यह बाबा साहब ने कहा। इसलिए जब रिपोर्टर ने उनको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा कि बाबा साहब आपने इतना शुष्क धर्म इस अपने समाज के उत्थान के लिए क्यों दिया, इतना सूखा हुआ धर्म आपने क्यों चुना, क्योंकि यहाँ तो बौद्ध धर्म के कोई भी अवशेष दिखते नहीं है, कोई भिक्षु नहीं दिखता है, कई विहार नहीं दिखते है, कई बुद्ध का नाम कोई लेता नहीं है, ऐसा शुष्क धर्म आपने क्यों लिया? तो बाबा साहब ने उसको जवाब दिया, इस जवाब को ध्यान से सुनिए, शायद मैं वहीं रुकूंगा। उन्होंने कहा कि हे भल्या मानसा, या भारतीय सभ्यतेचा आणि इतिहासाचा तू सखोल अभ्यास केलेला असेल असं मला वाटत नाही, जहां कहीं भी मैं 10 फीट जमीन खोदूंगा वहां बुद्ध का रूप ही मुझे मिलेगा, वहां केवल बौद्ध धर्म के अवशेष ही मुझे मिलेंगे, वो केवल इस देश में ही नहीं, इस देश के इर्द गिर्द मुझे मिलेंगे। आप अशोक का राज्य देख लीजिए, उस भारत की, समृद्ध भारत की संकल्पना बाबा साहब कर रहे थे, और कह रहे थे अगर मैं उस बीज को पानी डालूं, कहीं पर भी इस देश में उस बीज को अगर मैं पानी डालूं, तो मुझे इसमें संदेह नहीं है कि वहां से बोधि वृक्ष पनप कर आएगा, वहां से बोधि वृक्ष खुलेगा और उस छाया में जाति हीन समाज निर्माण होगा, सच्ची स्वतंत्रता, बंधुता और समानता निर्माण होगी, इसमें मुझे कोई भी संदेह नहीं है। भाई और बहनों, ये जो चेहरे में देख रहा हूँ, ये जो फूल मैं देख रहा हूँ, उस पेड़ के वो फूल है जहाँ किसी जाति से लोग नहीं आते हैं, किसी धर्म विशेषता से वहाँ लोग नहीं आते, किसी वर्ण विशेष से लोग नहीं आते, किसी लिंग विशेष से लोग नहीं आते, किसी प्रांत विशेष से लोग नहीं आते। उस समतामूलक, समानतामूलक, जाति विहीनतामूलक, बंधुतामूलक, मैत्रीमूलक समाज की बाबा साहब बात कर रहे हैं। यह केवल कहने से नहीं होगा, मैं पहले फिर से कह चुका हूँ कि वो बार बार पैदा नहीं होते हैं, हमें यह सामूहिक रूप से करना होगा। सबसे पहले हमें वैयक्तिक रूप से करना होगा, अपने मन को, उस न्यून दंड को नष्ट करना होगा, बौद्ध धर्म को हमें गहराई से समझना होगा। जो स्व है, जाति मूलक स्व है, लिंग मूलक स्व है, प्रांत मूलक स्व है, जो विशिष्टता मूलक स्व है, उस आत्मा को, उस स्व को सबसे पहले नष्ट करना होगा। अगर आप अपने आप से ही इतना ज्यादा प्यार करते हैं तो आप औरों से प्यार कैसे करेंगे? जब आप अपने ही जाति तबके से या समुदाय से इतना प्यार करते हैं तो औरों के प्रति आपकी सहानुभूति कैसे निर्माण होगी? औरों के अन्याय के प्रति आप कैसे प्रतिसाद दोगे? यह नामुमकिन है। इसलिए सबसे पहले उस स्व को नष्ट करना है जो जाति मूलक है, जो राष्ट्र मूलक है, या इसका मतलब एक विशिष्ट प्रति के, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राष्ट्रीयता की बात करता है। उस पक्के स्व को नष्ट करने की आवश्यकता है। यहाँ समानता मूलक स्व को निर्माण करने की आवश्यकता है। यहाँ बंधुता मूलक, मैत्री मूलक स्व को, लोकतांत्रिक मूलक स्व को निर्माण करने की आवश्यकता है, जो बुद्ध के संघ में बुद्ध ने सिखाया। यह सबसे पहला काम आज हम लोगों ने, इस देश के हर एक नागरिक ने करना चाहिए। वो सच्चा राष्ट्रवाद है, वो सच्ची देशभक्ति है, वही इस देश को प्रगति के कागार पर बिठा कर रहेगा, इस पर मुझे विश्वास है। वह तत्व हम इस देश के नागरिक ने, हर एक नागरिक ने स्वीकारना चाहिए। यह व्यक्तिनिष्ठ बात है, यह इंडिविजुअल बात है। इसका जो दूसरा स्तर है वह है कलेक्टिव। सब लोगों ने यह करना चाहिए, केवल मैंने ही नहीं, आपने भी करना चाहिए। केवल धर्मचारी ने, या धर्म मित्र ने, या भिक्षु ने, या साधु ने, या मौलवी ने, या पादरी ने, या जो किसी का चर्च है या उसी ने ही करना है, ऐसा नहीं। हर एक व्यक्ति को जो स्व से प्रभावित है, अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है, उसको नकार कर सबके श्रेष्ठता की, सबके समानता की, सबके बंधुता की बात करने में भी उस कलेक्टिव सांघिक, जिसे मैं कह सकता हूँ बौद्ध धर्म के भाषा में, उस संघ की बात करनी होगी, जहाँ वो अलग अलग नदियों से पानी आता है और किसी नदी का पानी किस नदी से आया है हम फर्क नहीं कर सकते। ऐसे समुद्र का जो संघ है, ऐसे संघ की स्थापना, ऐसे संघ का निर्माण करना आवश्यक है। वह सांघिक तरीके से ही हो सकता है। एक व्यक्ति बाबा साहब बनेगा, यह सपना आप छोड़ दीजिए। बाबा साहेब भाषण दर में तुम्हारा सांगेल को यही लाने तुम्हारी मुक्ति करेल या ब्रह्मा तुम्हें राहू नका। तुम्हारी मुक्ति स्वतः हाथ है, स्वतः कृति पर, स्वतः क्षमता तुम्हें विश्वास ठेवा, अत्यभूत भव। असं बाबा साहब बोलते होते। वो जो आखिरी का पैसेज है 14 अक्टूबर 1956 के भाषण का, वो आप देख लीजिए। जो बुद्धा ने आनंद वाला संदेश दिला होता है, तो संदेश तुम्हारा देव इच्छित हो। असे बाबा साहेब बोलले होते, स्वतःची उन्नती तुमच्या स्वतःच्या हातात आहे, तुमच्या स्वतःच्या कर्तृत्वात आहे। हे वाक्य बाबा साहेब बोलले होते। आज भी यह विधान, यह वाक्य अत्यधिक भव इतना ही आवश्यक है। इसलिए हम सबके परिवर्तन के साथ साथ एक सांघिक रूप से आपको भी, हर एक व्यक्ति को इसको करने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को इस तत्व के ऊपर चलने की आवश्यकता है। मुझे लगता है तभी हम एक सच्चा राष्ट्र, सच्चा समाज, और जिसे हम कह सकते हैं एक सच्चा धर्म निर्माण कर सकते हैं। सबके मानवता की जो बात करता है, एका मानसासी दूसरा मानसासी मानुष्य ने केलेला व्यवहार मजे मी धर्म समजतो, ती धर्माची परिभाषा बाबासाहेबांनी केली आहे, त्या शिलाची परिभाषा बाबासाहेबांनी केली आहे। हे विषय इतके मोठे आहेत, या कमी वेळात सर्व गोष्टी मी बोलू शकत नाही, सगळ्याच गोष्टी मी सांगू शकत नाही, म्हणून मी तुम्हाला आग्रह करतो की निदान कोणत्या तरी भाग बुद्धांनी जन्माचा असो का बाबासाहेबाच्या रायटिंगचा असो की कोणत्याही रायटिंगचा असो, जो तुमच्या स्वला नष्ट करतो, जो तुमच्या समुदायाच्या भावनेला, अतिरेक्याच्या भावनेला, कट्टरवादाच्या भावनेला नष्ट करतो, त्याचं वाचन करा, सामूहिक विचारणी करा आणि ती जो संघ निर्माण करण्याचा बाबासाहेबांनी दीक्षाभूमीवर प्रयत्न केला होता त्या संघाचं एक छोटंसं फूल म्हणून प्रयत्न बौद्ध महासंघ पण आहे, त्याची तुम्ही मदत घेऊ शकता. इतर तुमचे कोणी दुसरे शिक्षक असतील किंवा दुसरे संघ असतील त्यांची तुम्ही मदत घ्या. ज्या संघात मी आचरण करतो, ज्या संघात मी पालन करतो, त्याच्यात मला याचा फायदा होतो. तो संघ श्रेष्ठ आहे किंवा तोच एक संघ आहे असा माझा त्रास नाही, पण त्या संघातून मला निश्चित फायदा झाला. माझ्या स्वतःच्या अनुभवातून मी बोलू शकतो आणि म्हणून ज्या कोणत्या परिस्थिती तुम्हाला या स्वतून मुक्त करण्यासाठी, या समाज आणि जातीच्या बंधनातून मुक्त करण्यासाठी मदत करत असतील त्याचं तुम्ही वाचन करा आणि या स्वला मारून, या समुदायाच्या भावनेला मारून, माझाच समाज, माझी जात, माझाच धर्म, माझाच संघ ही जी स्वची भावना आहे वैयक्तिक आणि सामूहिक रूपावर, ज्याला ग्रुप आपण म्हणतो, ती तोडून एक सच्चा जो संघ आहे, जो खरंच समता, स्वातंत्र्यता आणि बंधुत्वावर आधारित आहे, ज्याचं स्वप्न बाबासाहेबांनी पाहिलं होतं, ज्या प्रबुद्ध भारताचं स्वप्न बाबासाहेबांनी पाहिलं होतं, त्या भारताच्या निर्मितीसाठी तुम्ही योगदान करा. नुसतं त्यांचं म्हणजे काय की उत्साह करून नाही, ते नाचणे बंद करून वाचणे आपण आता सुरू केले पाहिजे. बाबासाहेबांच्या स्वप्नातला खरा प्रबुद्ध भारत आपण निर्माण केला पाहिजे. आज या देशासाठीच नाही तर सर्व जगासाठी असं एक उदाहरण बनून हा एक भारत समोर आला पाहिजे. सच्च्या संविधानाच्या परिच्छेदाच्या आधारावर हीच खरी श्रद्धांजली बाबासाहेबांसाठी होईल. आपण सर्व म्हणून हे कार्य केले पाहिजे. एका माणसाचं ते काम नाही, सांघिक रूपाने ते आपण करावं, आपले हेवेदारे सोडून आपण ते करावं, आपले जे मतभेद आहेत त्याला मिटवून आपण करावं, तेव्हाच वाचाल तर वाचाल, तेव्हाच आपण वाचू, तेव्हाच आपली मुक्ती होईल, तेव्हाच आपली उन्नती होईल, तोच खरा बाबासाहेबांचा सन्मान होईल, तोच खरा या देशाचा सन्मान होईल, तीच खरी राष्ट्रसेवा होईल, तीच खरी मानव सेवा होईल, तीच खरी देशभक्ती होईल असं मला वाटते. इथं मी थांबतो. थँक्यू व्हेरी मच. जय हिंद. नमस्कार.